ও মাতুশ্রী বেলাবেন তথা মূলজিভাই দইয়া বিশ্রাম দইয়া উনকে পরিবার দ্বারা আয়োজিত তথা প্রেমপুরী আশ্রম সংযুক্ত আয়োজিত গীতা চিন্তন মালা কে অন্তর্গত একাদশ দিবসীয় বিশেষ বেদান্ত চিন্তন কা আজ তিসরা দিন হ্যাঁ অভ্যাস কে লিয়ে তিসরা শ্লোক হ্যাঁ আপকে পাশ কাগজ হো তো অভ্যাস করলো তাপত্রয়ার্ক সন্তপ্তঃ কশ্চিদ উদ্বিগ্ন মানসঃ সমাধি সাধনৈর্যুক্তঃ সদ্গুরুম পরিপৃচ্ছতি অনায়াসেন যস্মেনাস্মন মুচ্চেয়ম ভববন্দনাত্ তন্মে সংক্ষিপ্য ভগবন কেবলম কৃপয়া বদ গুরুরুবাচ সাধ্বীতে বচন ব্যক্তি প্রতিভাতি বদামি তে ইদম তদিতি বিস্পষ্টম সাবধান মনঃ শৃণু তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থম যজ্জীব পরমাত্মনোঃ তাদাত্ম্য বিষয়ম জ্ঞানম তদিদম মুক্তি সাধনম শিষ্য উবাচ কো জীবঃ কহ পরশ্চাত্মা তাদাত্ম্যম বা কথম তয়োঃ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যম বা কথম তত প্রতিপাদয়েত গুরুরুবাচ অত্র ব্রূমঃ সমাধানম কোন্যো জীবস্ত্বমেব হি তত্ত্বমস্যাদি বাক্যম বা যস্ত্বম পৃচ্ছসি মাম কোহম ব্রহ্মৈবাসীন সংশয়ঃ বেদান্ত বিচার হ্যাঁ ভগবান শঙ্করাচার্য জি নে বিবেক চূড়ামণি মে লিখা হ্যাঁ বেদান্তার্থ বিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম মনুষ্যোঁ কো জীবাত্মা কো উত্তম জ্ঞান কী প্রাপ্তি তো বেদান্ত কা অর্থ বিচার করনে পর হি উত্তম জ্ঞান কী প্রাপ্তি হো সকতি হ্যা অন্য কই উপায় নহি উত্তম জ্ঞান প্রাপ্তি কে লিয়ে इसीलिए आसुप्तेरामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। प्रातः उठने से लेकर सायं जब तक गहरी निद्रा न आवे तब तक वेदांत का ही चिंतन करते रहना चाहिए, तभी जाकर जीव का कल्याण होगा। वो हमारे एक शिष्य हैं, किसी प्रसंग में उन्होंने कहा कोई सिद्ध महात्मा मिले और सिर में हाथ रख दे और हमको सब कुछ स्पष्ट रूप में भान होने लग जाए, कितना आनंद आता होगा है देखो। लेकिन वेदांत इस प्रकार के प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ता है। कोई तुम्हारे सिर में हाथ रख दे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जावे, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि स्वयं के अविचार से जीव भाव और संसार की जो प्राप्ति हुई है, स्वयं के विचार किए बिना वो भ्रांति हटने वाली नहीं है। इसीलिए किसी के सिर में हाथ रखने मात्र से ये काम न होने वाला है। और यदि कोई ऐसा कहता है तो ये तुम्हें ठगने की चेष्टा करता है, भ्रमित कर रहा है। शिष्य ने कहीं सुन रखा है, कहीं प्रवचन में सुना हो, चाहे किताब में पढ़ी हो, उसने कहीं सुन रखा है, कहीं पढ़ रखा है, तरति शोकम आत्मवित्त। आत्मज्ञानी ही समस्त शोक मोह से पार हो जाता है। शोक मोह से पार होने का और कोई उपाय नहीं। तरति शोकम आत्मवित्त, ये कहीं सुना है उसने, और यह भी सुना है कि ज्ञान देवतु कैवल्यम। शोक मोह से ग्रसित भी है, खुद शोक मोह से ग्रसित है, और यह भी सुन रखा है कि तरति शोकम आत्मवित्त और ज्ञान देवतु कैवल्यम। साथ ही यह भी उसने सुन रखा है, आचार्यवान पुरुषो वेद, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो विधिवत आचार्य के चरण में बैठकर श्रवण करता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जान सकता है। आचार्यवान माने धनवान, जैसे धनवान को क्या बोलेंगे, धन वाला, धन है जिसके पास, वो क्या हुआ धनवान, गुण है जिसके पास, गुणवान। इसलिए आचार्य है जिसके पास, वो आचार्यवान, आचार्य वाला। आप लोग आचार वाले तो हो है ना, आप लोगों के घर में आचार जरूर हो, इसलिए आप क्या हैं, आचार्यवान हैं कि आचारवान हैं? आचार्यवान है, घर में आचार्य रखा है घर में रखी हो चाहे न रखी हो, प्रेमपुरी में जरूर रखा है, शायद प्रेमपुरी में आचार नहीं है, नहीं है, कोई महात्मा खाने की रुचि रखता है, मांग करता है कि मुझे अचार चाहिए, तभी लाकर दिया जाता है, लेकिन पहले रिजर्व में अचार नहीं रखा जाता है। प्रेमप्रिय आश्रम आचार से खाली हो सकता है, लेकिन आचार्य से खाली नहीं हो सकता है। तो ये सुना है उसने, आचार्यवान पुरुष हो वेदा, आचार्यवान होना चाहिए। जब तक आचार्यवान नहीं होगा तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, बोध की प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति इति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आचार्य कौन है? तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः आचार्य, तो उनसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनसे प्राप्त ज्ञान से ही आत्मा को परमात्मा को जाना जाएगा, और उस ज्ञान से ही शोक से बचा जा सकता है। तरति शोकम आत्मविद, गीता में भी उसने पढ़ रखी है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इस सब मिलाकर शिष्य को यह पूरा विश्वास हुआ है कि किसी आचार्यवान गुरु के पास ही जाना चाहिए। तो यह श्लोक के द्वारा उसी का ही संकेत किया है। तापत्रयार्क संतप्तः कश्चित् उद्विग्न मानस। तापत्रय से अर्क संतप्त, तीन प्रकार का ताप ही है प्रचंड सूर्य, खूब बारिश होगी तो गर्मी कम होगी, है ना, है ना, को बारिश होने लग जाए दो चार दिन लगातार तो गर्मी तो कम हो जाएगी। ये दो आधिदैविक गर्मी तो थोड़ा कम हो सकता हो बादलों से भी, लेकिन फिर भी एयर कंडीशन के कमरे में बैठे बैठे भी गर्मी होती है। ऐसे तापत्रय संतप्त, तापत्रय अर्क, सूर्य का नाम है अर्क, अर्च्यते इति अर्क, अर्चना शब्द से सूर्य का नाम पड़ा अर्क, क्योंकि सूर्य वंदनीय है, अर्चनीय है, सभी उसका उसकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, इसलिए उसका नाम हुआ अर्क। एक तो दिन में सूर्य का ताप संतप्त किया जा रहा है, रात में ये त्रिविध सूर्य है, ये त्रिविध तापत्रय अर्क संतप्त ये तपा हुआ है, तीन प्रकार का ताप आप लोगों ने बहुत सुना है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्टय और पंचीकृत पंच महाभूतोत्थ देह, इस सब मिलाकर आध्यात्मिक ताप प्रदाता हैं, यही आध्यात्मिक ताप के संतप्त करने वाले वस्तु हैं। कभी शरीर से ही तपता है व्यक्ति, शरीर से परेशान होना ही ताप है। अनावश्यक मोटा हो रहा है, अनावश्यक दुबला हो रहा है, मोटा हो रहा है चला नहीं जा रहा है, दुबला हो रहा है चला नहीं जा रहा है, कमजोर हो रहा है। इंद्रियां विकल हो रही हैं, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई अंधा हो रहा है, कोई बहरा हो रहा है, प्राण शिथिल हो रहे हैं, मन बुद्धि विक्षिप्त हो रहा है, तो यह आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप भी त्रिविधा है, आदि व्याधि उपाधि, ये त्रिविध ताप है। स्थूल शरीर संबंधी जो ताप है वह व्याधि है, व्याधि स्थूल शरीर में होता है। सूक्ष्म शरीर संबंधी जो ताप है वह आदि है, इसलिए आदि व्याधि शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। व्याधि तो स्थूल शरीर में होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, मधुमेह होगा, है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बोलो पोटासियम बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, ये आपको परेशान करता है कि नहीं, तपा रहा है कि नहीं, ये अशांति का कारण है। छटपटाता है व्यक्ति इससे, हाँ, तो ये व्याधि है, ये स्थूल शरीर में होने वाले ताप हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य आदि राग द्वेष ईर्ष्या, ये सूक्ष्म शरीर में होने वाली आदि है, ये ताप है। और मूर्खता, अज्ञानता, मूर्खता ये कारण शरीर में होने वाली ताप है, ये उपाधि है। कारण शरीर में उपाधि ताप रहता है, सूक्ष्म शरीर में आधि ताप रहता है, स्थूल शरीर में व्याधि ताप रहता है। ये अध्यात्म के तीन वर्ग हैं ताप, एक ही अध्यात्म के त्रिविध ताप हैं। इससे आप परेशान हैं, हम परेशान हैं, जो परेशान है। इसी तरह अधिभूतों से परेशान हैं, इसी तरह अधिदैवों से परेशान हैं। तो उसको कहा तापत्रय अर्क संतप्त, जो ताप का इन संताप का अनुभव नहीं करता है वो तो आप मस्ती में रहे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो उसके लिए ये समस्या नहीं है। तो वो किसी गुरु के पास नहीं जाएगा, वो ये आचार्यवान पुरुषो वेद तरति शोकम आत्मवेद सुनते हुए भी उसको इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। तापत्रयार्क संतप्त कश्चित उद्विग्न मानसः, कोई उन कोई में से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, मोनिश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कश्चित कोई, पूरे पृथ्वी के कश्चित अर्थात कोई मनुष्य ही। क्योंकि वेदांत मनुष्य को ही जानता है, शास्त्र मनुष्य के लिए है, वेदांत मनुष्य को जानता है। तो वेदांत मनुष्य के लिए है, मनुष्यों में भी तापत्रय संतप्तों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य शब्द का अर्थ होता है मनोहो अपत्यम। मनु महाराज से जो परंपरा चली आई है तो मनुसंतति मनोअपत्यम मानव तो मनुष्य मनसा शिव्यति इति मनुष्य विचार से संबंधित जो प्राणी है, मन उपलक्षित विचार, विचार से संबंधित जो प्राणी है वो मनुष्य है। या मनो और सत्रुपा के माध्यम से जिनका जो परंपरा में आए हैं वो मनुष्य है। भारतीय चिंतन तो ये है भाई, मनुष्य की परिभाषा हमारे पूर्वज, प्रथम पूर्वज तो मनुष्य सत्रुपा थे, उन्हीं से ही तीन कन्याएं उत्पन्न हुई, दो पुत्र उत्पन्न हुए और उन्हीं से ही कर्दम ऋषि की पत्नी देवोती, मनुपुत्री देवोती, उनसे नौ कन्याएं उत्पन्न हुई और क्रमशः सप्तऋषियों को, नव ऋषियों को कन्याएं ब्याही गई। वो ऋषि बिंदु वंश के मूल कारण हुए, गोत्र प्रवर्तक हुए, अत्रि भृगु वशिष्ठ आदि। आपका कोई न कोई तो गोत्र होना चाहिए, अत्रि गोत्र, भृगु गोत्र, वशिष्ठ गोत्र आदि आदि सब ऋषियों के ही आप प्रवर हैं, आप परंपरा के, इसलिए आप मनु महाराज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप मनुष्य हैं। मनुष्य की परिभाषा तो पूर्वीय दर्शन इस तरह करता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नहीं समझा। मनुष्यों का पूर्वज बादर है करके कह दिया, डार्विन ने कह दिया, बंदर ही बुद्धिमान हुआ तो फिर मनुष्य हुआ, बंदर विकसित हुआ तो मनुष्य हुआ। ऐसा तो कहीं देखने में आया नहीं कि मनुष्य अविकसित होकर बंदर हुआ, उनका मान्यता यही है। पहले चार पांव से चलता था बंदर, धीरे धीरे उसने दो पांव से चलना सीखा, पहले कच्चा फल खाता था बंदर, धीरे धीरे पका के खाना सीखा तो मनुष्य हो गया। ले जी कितना आसान है। बोले कि पूछे पूछ कहां चली गई, फिर बोलो फिर मनुष्य में पूंछ कहां चली गई? बंदर में तो पूंछ आज भी है, मनुष्य में पूंछ कहां चली गई? बोले ये बंदर उछल कूद करते करते वो पूंछ भी घिस गया, गायब हो गया। तो मनुष्य बिगड़ेगा, बंदर सुधरेगा तो मनुष्य बनेगा, मनुष्य बिगड़ेगा तो शायद पीछे पूछ आ जाएगा, पला जाएगा। लेकिन महाराज भर्तृहरि ने तो देखा है पीछे पूंछ पैदा होते हुए, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना करके शास्त्र संस्कार से रहित मनुष्यों को सिंह और पुच्छ रहित पशु की संज्ञा दी गई है। इसलिए संस्कार, सनातन धर्म में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। पशु से मनुष्य बनाने की प्रक्रिया ही संस्कार है। संस्कार से संस्कृत हुआ हुआ प्राणी ही मनुष्य हो सकता है, अन्यथा वह पशु ही रहेगा। शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय होता है, यह आप लोगों ने सुना होगा, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। ये शास्त्र का लक्षण है अनुबंध चतुष्टय। अधिकारी का फिर चार लक्षण है, नित्यानित्य वस्तु विवेक या मूत्रार्थ बलभोग विराग षड संपत्ति मुमुक्षुता, ये अधिकारी के चार लक्षण हैं। और शास्त्र के चार लक्षण अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। इस श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी इस वाक्यवृत्ति के अधिकारी कौन है, ये अधिकारी का लक्षण बताने जा रहे हैं। वही व्यक्ति को वाक्यवृत्ति समझ में आएगा और उसी के लिए ये उपयोगी होगा, क्योंकि जो जिसको समझ में आएगा उसी के उपयोगी है, और जिसको समझ में नहीं आए उसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ना आवे तो भी उपयोगी होता है व्यवहार में, व्यवहार में ऐसी चीज है, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा। यहां समझ में आने पर ही उपयोगिता है, समझ में ना आवे तो उपयोगिता नहीं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, महाराज ये जो मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र जपने के लिए देते हैं, कह देते हैं ये मंत्र जप करो, खूब जप करो, खूब जप करो, खूब जप करो। मंत्र के अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक उस मंत्र के जप का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अर्थ समझकर जपेंगे तभी फायदा होगा। महर्षि पतंजलि ने तो पतंजलि योग सूत्र में इसका संकेत कर दिया है, तस्य वाचक प्रणव ईश्वर प्रणिधानात् वा तज्जप तदर्थ भावना। उस ईश्वर के प्रणिधान से भी तुम्हारे चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है, दो विकल्प रखा है चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए। एक तो अष्टांग योग के माध्यम से चित्तवृत्ति निरोध किया जा सकता है, दूसरा ईश्वर प्रणिधान से भी चित्तवृत्ति का निरोध किया जा सकता है। ईश्वर प्रणिधान के लिए ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए, और केवल जप करने से नहीं होगा, उस नाम के अर्थों का चिंतन भी करते रहना चाहिए। तो अर्थ चिंतन पूर्वक नाम जप ही फलीभूत हो सकता है, ऐसा महर्षि पतंजलि संकेत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ बोध न भी हो, मंत्र के अर्थ का बोध न भी हो, मंत्र की विशेषता यह है वह अपने काम करने में मंत्र स्वयं सक्षम है, उसमें शक्ति है, खाली जप मात्र से भी वो अपना काम करेगा, प्रयोजन सिद्ध करेगा। उदाहरण दिया जाता है कैसे महाराज, कहते हैं किसी को सिर दुख रहा है, किसी का सिर दुख रहा है, सर दुख रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर से कह रहा है कि महाराज तीन दिन से लगातार मेरा सर दुख रहा है, तो डॉक्टर एक दवाई की गोली देता है और कहता है कि ये पानी से खा लो। और वो रोगी वो दवाई किससे बनी, कैसे बनी, कहां बना, कब बना, इस सब को जानने की जरूरत है कि नहीं? जानने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा गर्म पानी से खाओ तो फलीभूत होगा कि नहीं, जानने की जरूरत है? वो अपना काम करेगा कि नहीं दवाई? इसी तरह परमात्मा के जो मंत्र जप की बात कही गई है, तुम जप करो, उसके अर्थ को जानने की जरूरत नहीं, वो अपना काम करेगा। दवाई के महत्व को जाने बिना भी दवाई काम करती है खाने पर, इसी तरह मंत्र के अर्थ को जाने बिना भी मंत्र काम करता है जप करने पर। तो जप करो बस, मंत्र काम करेगा। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं है, महावाक्य का जप करने मात्र से काम नहीं चलेगा। जीव ब्रह्म की एकता कैसे संभव है, जहत लक्षणा अजहत लक्षणा भागत्याग लक्षणा पूर्वक विरोधांश का परित्याग पूर्वक अविरुद्ध चेतनांश में एकता का बोध जब तक नहीं होगा तब तक महावाक्य काम नहीं करेगा। उसका काम करने का मतलब क्या हुआ? अविद्या की निवृत्ति और अपने स्वरूप के अपरोक्ष अनुभूति, ये महावाक्य का काम करने का लक्षण है। महावाक्य ने काम किया तो क्या हुआ? तरति शोकम आत्मवित्, आपका शोक मोह घटने लगा कि नहीं? दवाई ने काम किया, लक्षण क्या है? सिटामोल खाने पर दवाई ने काम किया, इसका लक्षण क्या है? तुम्हारा टेम्परेचर घटना शुरू हुआ कि नहीं? थर्मामीटर लगाना पड़ेगा कि नहीं? 104 डिग्री बुखार थे, पैरासिटामोल खा ली, डॉक्टर ने कहा पैरासिटामोल खाओ, कैसे बना महाराज? पूछने की जरूरत है? खा लो। और उस दवाई ने काम किया कि नहीं ये जानने का, थर्मामीटर लगा लो थोड़ी देर के बाद, घटा कि नहीं? यदि टेम्परेचर 4 में से 3 आ गया, 3 में से 2 आ गया, 102, 2 में से 1 आ गया, 1 में से 100 आ गया, 100 में से 900 आ गया, तो दवाई काम कर रही है। इसी प्रकार से महावाक्य काम कर रहा है, इसका लक्षण क्या है? दवाई खाए जा रहे हो, कभी थर्मामीटर लगाया है? टेस्ट किया? दवाई तो खाए जा रहे हो और टेस्ट करते ही नहीं हो,
दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए तो टेस्ट ही करना पड़ेगा ना। महाराज ये दवाई खाइए, एक हफ्ते के बाद लैब टेस्ट करके आइए, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं शुगर बढ़ गया, ये दवाई खाइए, सात दिन के बाद फिर टेस्ट करके आइए। हाँ, दो महीना हमको हैरान किया, शुगर बढ़ गया, अब डॉक्टर ने कहा कि इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, सभी डॉक्टर कहते हैं एक स्वर से इंसुलिन लो। तब हमने कहा कि अच्छा इंसुलिन शुरू करते हैं, तो सब गोली फेंक के इंसुलिन शुरू किया, सुई लगाना शुरू किया, इंजेक्शन पहले थोड़ा यूनिट से शुरू किया, उसने कम यूनिट से शुरू किया, एक हफ्ते के बाद टेस्ट करा के आना, स्वामी जी बोलता है। सात दिन तक लगातार लिए, फिर गए टेस्ट करा के तो घट नहीं रहा है, फिर उसने बढ़ाई दवाई बढ़ा दी, फिर कहता है एक हफ्ते के बाद टेस्ट करके आना महाराज। तो वह दो महीने तक लगातार दवाई बढ़ाते जा रहा है, टेस्ट करो कहता है। जब आठ दस बार टेस्ट की तब जाकर लगातार एक ही रेंज में आ गया, नॉर्मल रेंज में आ गया, तो कहता है बस अब यही शुरू करो लगातार, अब इसे घटाना भी नहीं बढ़ाना भी नहीं। तो काम कर रहा है कि नहीं ये निश्चय होना चाहिए नहीं अपने अंदर। इतने वर्षों से इतने दिनों से महावाक्य सुन रहे हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं, कभी थर्मामीटर लगाइए। कि जैसा का वैसा ही है रोग, समस्या ज्यों का त्यों है, तरति शोकम आत्मवेद, शोक मोह घटा के नहीं। वेदांत श्रवण महावाक्य श्रवण के बाद मोह ममता घटी कि नहीं, धन जन है देह गेह आदि प्रति ममता घटी कि नहीं। घट रही हो तो आप प्रोग्रेस में हो है, और नहीं घट रही हो तो कोई बात नहीं भाई, लगे रहो है? लगे रहो। आज सुबह ये वाक्य का प्रयोग किया था हमने, मोहनीश को सुनाया था, लगे रहो। कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, लगे रहो। या तो इसी जन्म में मैं सफल हूंगा, और ये सफलता नहीं भी मिली तो देह ही जाएगा, और क्या जाएगा है? ये शरीर तो इससे पहले भी लाखों बार गया है, नष्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले हजारों बार लाखों बार तो वो बिना लगे गया है बेकार में, अब तो लगते हुए जाएगा, तो एक दो जन्म और जाएगा तो हर जा नहीं, लगे रहो छोड़ना नहीं। कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, या तो सिद्ध करके छोड़ेंगे, यदि सिद्धि प्राप्त नहीं भी हुई तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा, बोलो नुकसान क्या होगा। तो यह चेद वेदी तथ सत्यमस्ति, इसको नुकसान मानोगे? बोले अरे ऐसा नुकसान तो कितने बार हुए हैं, एक दो बार और हो जाने दो, सफलता मिलेगी, लगे रहो। तो उससे फायदा क्या होगा फिर? तत्रतम बुद्धि संयोगम लवते पौर्व देहिकम, बेनिफिट ये है, लगे रहो। इसी जन्म में सफलता न भी मिले तो एक शरीर नष्ट हो जाएगा, और इस जन्म का जो तुम्हारा लगे रहना पना है तत्र, और दूसरे जन्म में तत्रतम बुद्धि संयोगम पौर्व देहिकम बुद्धि संयोगम, दूसरे जन्म में पहले जन्म की बुद्धि तुम्हारे साथ ही रहेगा। यानी पहले जन्म के जितने स्टेप आप चढ़ चुके हो उसी स्टेप से तुम आगे की यात्रा शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ दिया तो फिर नीचे डाउन में आ गए, फिर जीरो से शुरू करो, फिर मंजिल में पहुंचने से पहले मर गए, फिर नीचे आ गए, ऐसा नहीं होगा। जहां तक पहुंच गए वहां शरीर छूटा तो छूट गए, शरीर छूटा है तो वहीं स्टेप, फिर वहीं तुम्हारा जन्म, उसी स्टेप में तुम्हारा जन्म होगा। और उससे पहले चढ़े हुए सीढ़ी तो चढ़ा हुआ ही सिद्ध हो गया, तो और आगे चढ़ो तो एक दो जन्म में सफलता मिलेगी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये, सिद्धानामपि कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, लगे रहो। तो यहां तापत्रयार्क संतप्त लक्षण बताया, अधिकारी कश्चित् उद्विग्न मानसः, अनुबंध चतुष्टय अंतर्गत पहला अधिकारी है। अधिकारी का लक्षण कैसा है? समाधि साधनैर युक्तः, तब उसने ये सुना था कि गुरु के पास जाओ और आचार्यवान पुरुष ही उस तत्व को जान सकता है। और ये भी कहा था तद्विद्धि प्रणिपातेन, तो प्रणिपात का लक्षण बता दिया गया है। समाधि साधने युक्त, समाधि समदमोपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्ति लेकर गुरु के पास जाओ। खाली हाथ नहीं जाना, संपत्ति लेकर जाना। और हमारे पास आते हैं संपत्ति तो बच्चों को बांट देते हैं और खाली हाथ आते हैं, समझे कि नहीं? कहते महाराज मुझे आश्रम में आश्रय दीजिए। क्यों बेटा, तुम्हारे बच्चे नहीं है? बोले हाँ है। तो क्यों फिर यहां आश्रम में आश्रय लेने क्यों आए हो? बोले बच्चे देखभाल नहीं करते। बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो फिर कौन करेगा? बोले आप देखभाल करो महाराज, आपके आश्रय में आया हूं, आप देखभाल करो। अच्छा भाई हम देखभाल करेंगे तो पैसा संपत्ति कहां है? बोले संपत्ति तो बच्चों को दे दिया महाराज, देखो तो फोकट में हम देखभाल करें। ये सन्यासी होकर भी सुख नहीं है, मुसीबत ही है। हाँ देखो ना, बड़ा विचित्र है। इसलिए तो किसने कहा है ना, वो राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी का दुख दूना। किसने कहा? कबीर ने कहा है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी का दुख दूना। कहे कबीरा सुनो भाई संतो, सब जग सुना सुना। जो भी होने पर भी और ज्यादा दुख है, क्योंकि राजा को तो प्रजा का दुख है, प्रजा का अपना दुख है। राजा का दुगना दुख है कि प्रजा का भी दुख है, अपना भी दुख है। और संतो को तो राजा का भी चिंता है, प्रजा का भी चिंता है, तो इसीलिए दुगना हो गया ना, योगी का दुख दूना। लेकिन ये सब महात्मा सहज में कर जाता है वो, ये सब महात्मा सहज में कर जाता है, क्योंकि वह केवल निमित्त बन जाता है। कर्ता धर्ता ईश्वर है, इस पर विश्वास करता है, इसलिए वो सहज में हो जाता है। समाधि साधन ही वेदांत ने इच्छे वस्तु को संपत्ति कहा है। सट संपत्ति, हमने संपत्ति के बारे में बहुत व्याख्या की है, अपनी शैली से हम व्याख्या करते हैं। संपत्ति शब्द की सामान्य परिभाषा यह है कि जो अनुकूलता सुख का साधन हो उसको संपत्ति कहते हैं, या जिसमें सुख देने की संभावना हो, जो सुख दे रहा हो उसको संपत्ति कहेंगे। संपत्ति के ठीक विपरीत विपत्ति है। जो वस्तु दुख दे रहा हो उसको संपत्ति नहीं कहेंगे, विपत्ति कहेंगे। अब संसारी लोग जिसको संपत्ति कहते हैं वह कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से विपत्ति का ही कारण बनता है, इसलिए महात्माओं ने उसको संपत्ति नहीं कहा है। संसारी लोग घर को संपत्ति कहा, इसलिए चल संपत्ति अचल संपत्ति परिभाषा करते हैं संसारी लोग। पैसे को, गहने को, डायमंड आदि को, ज्वेलरी को वे लोग चल संपत्ति कहते। चल माने वो साथ में चले, है ना? चल संपत्ति का मतलब तुम जहां जाओ वहां साथ में जाए। हाँ, पैसा जेब में डालोगे और वहां जाओगे केदारनाथ तो साथ में जाएगा कि नहीं? तो जेब में टन पैसा होगा तो वहां भी गरम गरम हलवा पूरी समोसे खा पाओगे, नहीं पाओगे? तो सुख का साधन हुआ कि नहीं? पैदल नहीं चले तो घोड़े में चढ़ो, घोड़े में डर लगता हो तो डोली में चढ़ो, डोली में घोड़े में भी डर लगता हो तो हेलीकॉप्टर में जाओ, सुविधा हो गई कि नहीं? इसलिए उसको क्या कहेंगे? संपत्ति कहेंगे। लेकिन जब किसी को पता चले कि तुम्हारे जेब में भरा हुआ है और पीछे से बंदूक लेकर आ जाए तो वो संपत्ति क्या होगा? विपत्ति हो जाएगा। विपत्ति हो जाएगा। तो संपत्ति संपत्ति मतलब नहीं है। लेकिन संतों ने इसी संपत्ति के हर देश हर काल हर वस्तु से आनंद की प्राप्ति हो, किसी देश में हो। अब जैसे तुम्हारा घर है, यहां तो सुख का बंबई में फ्लैट है तो यहां तो वो सुख देगा, लेकिन अब केदारनाथ जाओगे तो ये फ्लैट सुख देने जाएगा? वहां नहीं जाएगा। इसको अचल संपत्ति। संत के तो ऐसे है कि बस संपत्ति, आहा क्या कहना। आजकल हमारे दिमाग में एक भजन गुनगुना रहा है, मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम है। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम, हाड़ मास के बने हैं पुतले, हाड़ मास के बने हैं पुतले, उस पर चढ़ी है चाम। परमात्मा ने इतना ठगा है, मलमूत्रों के थैली पर थोड़ा सा पॉलिश कर दिया बस खत्म। मलमूत्रों के थैली बना दिया, फिर उसके पर थोड़ा सा चमड़े की पॉलिश कर दी, क्या सुंदर लग रहा है। हाड़ मास के बने हैं पुतले, उस पर चढ़ी है चाँद, देख देख सब लोग लुभावे, देख देख सब लोग लुभावे, पर मेरा मन उपराम, मैं तो रमत जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। मात पिता और मीत प्यारे, भाई बंधु सुतबान, मात पिता और मीत प्यारे, भाई बंधु सुतबान, स्वार्थ का सब खेल बना है, स्वार्थ का सब खेल बना है, नहीं इनसे आराम, मैं तो रमत जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो यही संतों की संपत्ति और क्या है, यही है तो संतों की संपत्ति। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये छह ऐसी संपत्ति है कि तुम्हारे पास ये संपत्ति है तो तुम जंगल में भी सुखी रहोगे, महल में भी सुखी रहोगे, और ये संपत्ति नहीं है तो महल में भी तुम दुखी ही रहोगे। इसलिए दिल्ली में एक संत थे हमारे, अरे भाई एयर कंडीशन चलाकर बैठते हो, बाहर तो एयर कंडीशन है, अंदर हीटर जल रहा है, अंदर जब हीटर जल रहा है तो बाहर का एसी चला के फायदा क्या, एसी के अंदर भी ताप होता है कि नहीं। आजकल बच्चे बड़े विचित्र टैलेंट होते हो, हमसे किसी ने पूछा, एक बच्चे ने, पहले तो हमारा दिमाग चकराया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है, एबीसीडी ईएफजीएच जो अल्फाबेट है सबसे ठंडा वार्ड कौन सा है करके हमसे पूछा, एकदम ठंडा, कभी गर्म नहीं होता है, वो कौन सा वार्ड है हमसे पूछा भाई, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको आ गया, कभी गर्म नहीं होता है कहते हो, कौन सा है, एक वार्ड, एक वार्ड कभी गर्म नहीं होता है, तो हमने कहा तू ही बता दे भाई, उसने कहा बी, बी वार्ड है ना, बोले क्यों भाई वो गर्म क्यों नहीं होता, बोले क्योंकि ए सी के बीच में रहता है, ले राजा उल्लू बना दिया, उल्लू बना दिया हमको, क्योंकि बी वार्ड जो है हमेशा ए सी में रहता है कि नहीं बोलो, अब एसी में रहने वाला कभी गर्म होगा, उल्लू बना दिया हमको, हमने कहा ठीक ही कह रहा है भाई तू भी, लेकिन यहां तो एसी के अंदर भी गर्म हो रहा है, हीटर जल रहा है अंदर, तापत्रय तप संतप्ता, समाधि साधनेर युक्त सद्गुरुम परिपृच्छति, वो व्यक्ति तरति शोकम आत्मवित, इस प्रयोजन के लिए समाधि साधन से युक्त होकर सद्गुरु के पास जाता है और परिपृच्छति ही, परि शब्द का अर्थ होता है विधिवत, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पृच्छति पूछता है वो, क्या पूछेगा, अनायासेन येनास्मान् मुच्येयम् भवबन्धनात्, तन्मे संक्षिप्य भगवन् केवलम् कृपया वदः, अनायासेन येनास्मान् मुच्येयम् भवबन्धनात्, तन्मे संक्षिप्य भगवन् केवलम् कृपया वद, भगवन् ये संबोधन है, गुरु को संबोधन कर रहा है, संबोधन अभिमुखीकरणार्थम संबोधनम्, गुरु शिष्य का संबोधन करते हैं, शिष्य गुरु को संबोधन करते हैं, गीता में भी बाबा अर्जुन अर्जुन हे अर्जुन संबोधन होता है। अर्जुन भी कृष्ण को हे केशव आदि आदि अलग अलग नामों से संबोधन करता है, और केशव भी अर्जुन को पार्थ कुरुनंदन भारत अलग अलग नाम से संबोधन करते। संबोधन क्यों किया जाता है? अभिमुखीकरण। पहले कोई बात कहने से पहले उसके नाम संबोधन करोगे तो वह अपने ध्यान को लगाएगा। ए, मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? किस लिए संबोधन किया? तो इधर उधर वृत्ति बंटी हुई हो तो भी उसकी वृत्ति ठीक जिसने संबोधन किया है उसी के तरफ वो वृत्ति जाएगी। वृत्ति का अभिमुखीकरण ही संबोधन का प्रयोजन है, यानी उसके ध्यान अपने तरफ आकर्षण करने के लिए संबोधन करना जरूरी है। इसलिए यहां भगवान ये संबोधन किया शिष्य ने। हो सकता है कि शिष्य अपनी बात कहे जाए और गुरु का ध्यान कहीं अन्यत्र जाए, और शिष्य ने क्या कहा शिष्य के प्रश्न ही गुरु के दिमाग में ना आवे तो उत्तर कैसे देगा, गुरु कैसे उत्तर देंगे? तो ताकि मेरे प्रश्न को वो ठीक से सुने समझें और ठीक से मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें, इसके लिए शिष्य गुरु को संबोधन कर रहा है भगवान। भग शब्द छह प्रकार के हैं और उससे युक्त जो है वो भगवान है। षण्णाम भग इतिरिण तद्वान इति भगवान संबोधन। अनायासेन येनास्मन् यम भवबंधनात्, ये जो भव एव बंधनम भवबंधनम तस्मात् भवबंधनात्, संसार ही बंधन है, पूरा संसार बंधन है। तो कहां जाओगे बोलो? गत वर्ष नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया तो हम पोखरा के आश्रम में थे, तो उस दिन आश्रम के ट्रस्ट की मीटिंग थी और सभी ट्रस्टी लोग भी थे, हम भी थे। तो खाने से पहले मीटिंग वगैरह किया और भक्त भी थे, 60-70 आदमी लगभग हम लोग थे। तो खाना खाने के लिए हम बैठे थे, 12 बजे के लगभग मीटिंग खत्म हो गई और खाना खाने बैठे, हॉल में बैठे सभी एक ही साथ बैठे, क्योंकि आश्रमों का नियम है पंक्ति लगाकर बैठते हैं। ऐसे चौकी रखी थी, चौकी के ऊपर थाल कटोरी गिलास, हम खाना खाने बैठे और सब थाल में बैठे पंक्ति में खा रहे थे, बीच में खाते खाते ही बीच में आधा भी भोजन किसी ने नहीं किया होगा तो कंपन शुरू हो गया। मेरे टेबल में रखा हुआ गिलास तो कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। वो गिलास को संभालता हूं तो कटोरी खिसक जाती है, कटोरी को संभालता हूं गिलास खिसकती है। हिलने लगा, जैसे हिलने लगा तो सब लोग कोई थाल छोड़कर भागे बाहर, कोई थाल उठाकर ही भागे बाहर। ए भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो, सब भागे। अब मैं बैठा हूं, बैठा ही हूं कटोरी और गिलास संभाल रहा हूं। तो सब लोगों ने बाद में जब भूकंप गया फिर हमने खाना शुरू किया बैठे बैठे, तो सब लोग आकर कहने लगे महाराज भागो बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। आप तो वहीं बैठे आराम से। हमने कहा तुम भागकर जा कहां रहे हो? क्या तुम जहां गए बाहर भूकंप नहीं है? बाहर सारी धरती हिल रही है, तो जहां भी जाओगे वहां भूकंप तो है ही, धरती तो हिल ही रही है। जहां धरती न हिलता हो वो स्थान कहां है बोलो? हिल जाकर जा कहां जाएंगे? सारा संसार ही जब तुम्हारे लिए बंधन का कारण है तो हरिद्वार जाओगे कि बनारस जाओगे? कहां जाओगे बंधन मुक्ति के लिए? कहां जाओगे बोलो? हरिद्वार के भवन के अंदर नहीं है, संसार के अंदर नहीं है भव वंदना। इसलिए महाराजा भर्तृहरि ने कह दिया है, बड़ा सुंदर श्लोक है, बनेपि दोषा प्रभवंति रागिणाम, बनेपि दोषा प्रभवंति रागिणाम, गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तप, अकुत्सित कर्मणीय प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। आप लोगों के लिए तो बढ़िया ये श्लोक है, आप लोग याद कर लो। है आप कोई संत बुलावे ना हरिद्वार तो उनको जवाब दे सकते नहीं है? उनको जवाब तो दे सकते ना। कोई संत कहे कि हरिद्वार आओ, कोई संत कहे ऋषिकेश आओ, कोई संत कहे देवघाट आओ, कोई संत कहे काशी आओ, हमारे आश्रम में आओ, तो उनको जवाब तो दे सकते हैं ना। कम से कम ये श्लोक पढ़ देना, बने पी दोषा प्रभवंति रागिणाम। जिसकी हृदय में रागत द्वेष है, रागत द्वेष को लेकर घर को छोड़कर रागत द्वेष को लेकर यदि वन में गया है तो वन ही उसके लिए बंधन का कारण, अशांति का कारण बन जाएगा। वन अशांति का कारण नहीं है, उसके मन में हुआ हुआ जो राग द्वेष है वही अशांति का कारण है। इसी तरह घर अशांति का कारण नहीं है, मन के अंदर जो राग द्वेष है वही राग द्वेष ही अशांति का कारण है। घर तो छोड़ रहा है, राग द्वेष नहीं छोड़ रहा है, तो उसको शांति मिलेगी कहां? बोलो कहां मिलेगी? राग लेके गया है वो। बने भी दोषा प्रभवंति रागिणाम, गृहे भी पंचेन्द्रिय निग्रह तप। यदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय में स्वाभाविक रूप में आकर्षित होने वाले पांच ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करने कर सको तो तुम्हारे लिए घर ही तपोभूमि हो जाएगा। झगड़ा अशांति तो कब होता है? जब रसन इंद्रिय में नियंत्रण की क्षमता नहीं है, हैं? तब भोजन बनाया तो क्या, तो फिर ये तो नमक कम है, मिर्ची नहीं डाला, गुण को कम डाला, ये स्वाद नहीं वो स्वाद नहीं, झगड़ा शुरू है। ये बनाया वो बनाया, आज फलाना सब्जी क्यों नहीं बनाया? अरे भाई कहीं ज्योतिष ने लिखा तो है नहीं कि आज के दिन ये सब्जी खानी चाहिए? लिखा है, है? अरे खाना है, तुमको भूख लगी है तो खाओ, हमने भोजन बनाया है। भोजन भोग का निदान है, स्वाद भोग का निदान नहीं है। और स्वाद को वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर झगड़ा शुरू, अशांति शुरू। इसीलिए वेद ने कहा है जिते रसे जितम सर्वम। यदि किसी ने केवल एक इंद्रिय रसन इंद्रिय को जीत लिया तो उसने 50% संसार को जीत लिया। जिते रसम जितम सर्वम। तो गृहे भी पंचेन्द्रिय निग्रह तप, अकुत्सिते कर्मणीय प्रवर्तते, अनिंदित कर्म में लगा हुआ जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म में लगा, शास्त्र निषिद्ध कर्म से उपराम होकर नित्य नैमित्तिक कर्म में लगा हुआ जो व्यक्ति है वह उसके लिए तो गृहम तपोवनम, घर ही तपोभूमि है। भववंदना, ये संसार ही बंधन है, इस बंधन से मुच्चियम, मैं मुक्त हूं हो सकूं, ऐसा इसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना न पड़े, अनायासे न है? ऐसा कोई उपाय हो अनायासे न, एनास्मन मुच्चियम भवबंधनात्। देखो वास्तव में अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम करना नहीं पड़ता, समझे कि सर्प को हटाने के लिए लेबर, मजदूर, डंडा, पत्थर, ईंट कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा है? रस्सी को जान लो, सर्प तो अपने आप ही भाग जाएगा। अनजान से अधिष्ठान को न जानने से हुए हुआ ये भवबंधन है, अधिष्ठान को जानना क्या परिश्रम करना है, कुछ भी नहीं है। तो अनायासे न, बैठे बैठाए वो बैठे बैठाए सब काम हो जाएगा। अरे सोते सोते हो जाएगा, बैठी बैठाई भी बहुत ज्यादा है, सोते सोते है। क्योंकि केवल समझदारी बढ़ानी है, यहां करना कुछ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ब्रह्म विद्या में करना कुछ नहीं है, सिर्फ जानना है बस। तन्मे संक्षिप्य भगवान केवलम कृपया बदा, बोले मैं तुम्हारे बंधन छुटाने के लिए क्यों प्रवृत्त हूं भाई, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा बंधन हम छुटा देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्या देगा, शिष्य क्या देगा भाई? बोले महाराज कुछ देना लेना नहीं है, देने लेने की व्यापार ये तो फिर बनिया करेंगे, आप भी देने लेने की बात करेंगे? केवलम कृपया, क्योंकि आप परुणा वरुणालय हो और केवल कृपा करके हमको बता दो बस, कोई देने लेने की बात नहीं करना। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं, अब गुरु जी बोल रहे हैं शिष्य को, साध्वीते वचन व्यक्ति ही प्रतिभाति वदामि ते इदं तत् इति विस्पष्टं सावधान मनः श्रृणु। हे शिष्य, ते साध्वी, साधु इति साध्वीते, तुमने बहुत अच्छी बात कही। शिष्य के उत्साह वर्धन के लिए ये जरूरी है, उसके उत्साहवर्धन के लिए उसके प्रश्नों का प्रशंसा करो। उसके प्रश्न अच्छा प्रश्न है, भवबंधन से मुक्ति कैसे हो, तो ये अच्छा प्रश्न है, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, साधु ही थी, बढ़िया प्रश्न किया बेटा, गुरु के पास आकर ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए। कुछ लोग तो अपने आदत से मजबूर हैं, हमारे पास आते कहते हैं नरेंद्र मोदी अच्छे दिन ले आएंगे महाराज। अरे भाई तुम हम साधु से क्यों पूछते हो उसके बारे में, राजनीति के बारे में है? तुम्हारा दिन अच्छे आएंगे कि नहीं, तुम अपने बारे में पूछो। तुम पूछो कि महाराज मैं मुक्त हो सकता हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये पूछो। को हम कथमिदम जातम को वही कर्ता से विद्यते उपादान किमस्ती या विचार स्वयं ही दृशा। पूछने की बात तो ये है संतों के पास जाकर। नरेंद्र मोदी अच्छे दिन लाएंगे क्या मतलब है, हमको क्या लेने देना है, हमको तो प्रेमपुरी आश्रम में दाल भात रोटी खाने मिल रहा है, इससे अच्छा दिन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। फोकट में खाने को मिल रहा है, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं थे तो भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, बाद में भी प्रवचन करने आते रहेंगे, मिलता ही रहेगा। ये कौन प्रधानमंत्री बने कौन न बने हमको क्या लेना देना है, मैं तो रमता जो भी रहा हूं है, मेरा क्या दुनिया से काम। और हमसे तुम दुनिया की दारी की बात पूछते हो। साध्वी ते वचन व्यक्ति हे शिष्य, तुमने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रतिभाति वदामी ते, प्रतिज्ञा भी करते हैं गुरु, ते वदामी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। विवेक चूड़ामणि में भी मा वैष्ट विद्वान तब नास्ते उपाय अपाय संसार दुख तरणे अस्ति उपाय। तुमने कहा ना कि ये संसार दुख ये भवसागर से हम कैसे तरे, तुम चिंता नहीं करो बेटा, तुम आ गए हो ना मेरे पास। मां भेष्ट विद्वान, मां भी डरो नहीं, अब तुम हमारे पास आ गए हो ना, अब डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास संसार दुख तरणे अस्ति उपाय, उपाय है हमारे पास। एनेव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। जिन साधनों को अपनाकर यतयः पारम अस्ति, ज्ञानी यति सन्यासी महापुरुष भवसागर से पार तर के गए हैं, वही साधन मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अब चिंता मत करो। इस शिष्य के उत्साह के लिए शिष्य प्रशंसा, तो वही यहां शंकराचार्य कहते हैं, साध्वी ते वचन व्यक्ति ही प्रतिभाति वदामी ते इदम तप इति विस्पष्टम सावधान मनः श्रृणु। लेकिन एक शर्त है बेटा, सावधान होकर मेरे वचन को तुम्हें सुनना पड़ेगा। चित्त को इधर उधर लगाते हुए नहीं, वृत्ति विचलित करते हुए नहीं, बड़े सावधान से। शिष्य की प्रशंसा पूर्वक शंकराचार्य जी शिष्य को यह आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। ठीक है महाराज, आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूं, सावधान सुनूंगा, आप बताइए। तो संक्षिप्त रूप में पहले बता रहे हैं, तत्त्वमस्याधिवाक्योत्थम यज्जीव परमात्मनो हो तादात्म्य विषयम ज्ञानम तदिदम मुक्ति साधनम। तुमने पूछी है कि भव बंधन से मुक्ति कैसे, मुक्त कैसे हूं, उस भव बंधन से मुक्त होने का साधन एक ही है, वह है तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ। महावाक्य से जन्य अखंडाकार वृत्ति और उस वृत्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान, अखंडाकार जन्य वृत्ति और उससे उत्पन्न हुआ हुआ ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जीव परमात्मनोः तादात्म्यम् ज्ञानम्। भेद ज्ञान नहीं, जीव परमात्मा के भेद ज्ञान नहीं, अभेद ज्ञान। तादात्म्य माने अभेद ज्ञान। तादात्म्य का अर्थ होता है अभेद ज्ञान, एक्य ज्ञान। तद इदम मुक्ति साधनम, ये एक्य ज्ञान ही तुम्हारे भवबंधन से मुक्त होने का एक उत्तम साधन है। ये तो मैंने संक्षिप्त से तुम्हें बता दी है, और इसके विस्तार पूर्वक व्याख्या फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।